जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत अगली हेडिंग है, जजमानी व्यवस्था के लाभ अथवा महत्व। भारतीय ग्रामीण जीवन में जजमानी व्यवस्था आज भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। वर्तमान युग में जजमानी व्यवस्था की संरचना तथा प्रकारियों में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हो जाने के पश्चात भी गाँवों में इस व्यवस्था को एक उपयोगी संस्था के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से इस व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व अथवा विभिन्न लाभों को समझना आवश्यक हो जाता है। पहली हेडिंग है आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था ने सभी जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। अपने पैतृक स्वरूप के कारण इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को आजीविका की खोज में इधर उधर जाना नहीं पड़ता। सभी जातियों को अपने जजमानों से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समुचित साधन गाँव में ही प्राप्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सेवा करने वाली जाति का व्यवसाय पहले से ही सुनिश्चित रहता है, जिसके फलस्वरूप गांव में किसी प्रकार की व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा विकसित नहीं हो पाती। जजमानों की आर्थिक स्थिति इसलिए सुरक्षित रहती है कि उन्हें प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक अवसर पर विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलता रहता है, जबकि वे सेवा का पुरस्कार तब देते हैं जबकि फसल कटने के समय वे भुगतान करने की स्थिति में हो जाते हैं। दूसरी हेडिंग है मानसिक सुरक्षा। इस व्यवस्था ने गाँव में सभी व्यक्तियों तथा सभी जातियों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान युग में व्यक्ति के मानसिक संघर्षों का सर्वप्रमुख कारण रोजगार की खोज, बेरोजगारी की स्थिति, आकस्मिक विपत्तियां तथा फसल का खराब होना है। जजमानी व्यवस्था ने सेवाओं की अंतर संबंधता तथा जजमानी हक के अस्थायित्व के रूप में इन समस्याओं का समाधान करके व्यक्ति के मानसिक जीवन को सुरक्षित बनाया है। तीसरी सुरक्षा है सामाजिक बीमा। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण जीवन में सामाजिक बीमा के सभी गुणों से युक्त है। गांव में जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी तथा दुर्घटना जैसी स्थितियों में जजमान सेवा करने वाली जातियों की भरपूर सहायता करता है। वास्तविकता तो यह है कि जजमान तथा उसके कमीनों के बीच इतना घनिष्ठ तथा अनौपचारिक संबंध होता है कि उनके द्वारा एक एकीकृत ग्रामीण समुदाय का निर्माण हो जाता है। अनेक गांवों में सेवा करने वाली जातियां अपने जजमान की सुरक्षा के लिए सभी संभव सहायता देने का कार्य करती हैं। इससे भी जजमानी व्यवस्था सामाजिक बीमा का साधन बन जाती है। चौथी हेडिंग है ग्रामीण समुदाय में एकता। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं की अंतर संबंधता होने के कारण ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामूहिक इच्छा और संगठन की भावना विकसित होती है। गाँव में जब विभिन्न इच्छाओं और लक्ष्यों के बीच एकता स्थापित हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण समुदाय में हम की भावना एक सुदृढ़ रूप ग्रहण कर लेती है। भारतीय ग्रामों में यद्यपि अनेक धर्मों तथा जातियों के व्यक्ति साथ साथ निवास करते हैं, लेकिन जजमानी व्यवस्था से उत्पन्न लक्ष्यों और इच्छाओं की एकता से ही ग्रामीण समुदाय में एकता का गुण उत्पन्न हो सकता है। पांचवी हेडिंग है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण जीवन में नियंत्रण की स्थापना करने के क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कार्य व्यक्तिगत हित को ध्यान में न रखकर सामूहिक कल्याण की भावना से किया जाता है। जजमानी व्यवस्था द्वारा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इसलिए सभी जातियां एक दूसरे की प्रथाओं और परंपराओं का आदर करती रहती हैं। यह व्यवस्था जाति के नियमों से संबंध होने के कारण परंपराओं के प्रभाव को बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में आंतरिक अंचलों में बसे हुए ग्रामीण समुदायों में व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना इसी व्यवस्था की सहायता से संभव हो सका है। छठी हेडिंग है राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक। जजमानी व्यवस्था के आधार पर संगठित भारतीय गांव देश की शासन प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने तथा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। डॉक्टर राम कमल मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व के देशों की राजनीतिक संप्रभुता की अपेक्षित सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी आज्ञा पर आधारित न होकर प्रथाओं और परंपराओं पर अधिक आधारित है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुदृढ़ता सामाजिक विधानों से उतनी संभव नहीं है जितनी कि परंपरागत संस्थाओं से। जजमानी व्यवस्था ने इस क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगली हेडिंग है जजमानी व्यवस्था के दोष। जजमानी व्यवस्था ने भारत की सामाजिक संरचना को अनेक प्रकार से संगठित बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इस व्यवस्था में अनेक ऐसे दोष भी हैं जिसके कारण इसने व्यक्तिगत, जातिगत तथा सामाजिक जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। यही दोष जजमानी व्यवस्था में विघटन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इन दोषों के आधार पर जजमानी व्यवस्था में विघटन की प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है व्यक्तिगत जीवन में हानियां। क, जजमानी व्यवस्था पैतृक होती है, अतः काम करने वाली जातियों की नई पीढ़ी के युवक अपनी इच्छा और कार्यकुशलता के अनुकूल व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसके फलस्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा का समुचित रूप से विकास नहीं हो पाता। ख, दूसरी ओर जजमान भी एक अयोग्य और अकुशल व्यक्ति को सेवाएं देने से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने वाली जातियों का अधिकार जजमान पर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। किसी भी स्थिति में काम करने वाली जातियों का कोई दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के स्थान पर नहीं कार्य कर सकता। इसके फलस्वरूप व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाने के कारण सभी काम करने वाली जातियों की कार्यक्षमता में कमी होने लगती है। ग, इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि सेवाओं का रूप अत्यधिक परंपरागत होने के कारण कोई भी व्यक्ति नवीन प्रविधियों के द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सेवाओं में सुधार करने के बदले उसे कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। घ, यह व्यवस्था एक विभेदकारी नीति पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति को मिलने वाला पारितोषिक उसके श्रम के अनुसार न होकर उसकी जात के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, किसी संस्कार अथवा त्यौहार के अवसर पर कम परिश्रम के बाद भी पुरोहित को मिलने वाला पारितोषिक अधिक काम करने वाले निम्न जात के व्यक्ति की तुलना में अधिक होता है। मेन ने इन विभेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी दूसरी जात की अपेक्षा ब्राह्मण को मिलने वाला पारितोषिक साधारणतया 20 गुना अधिक होता है। दूसरी ओर निम्न जात के काम करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की बेगार के पश्चात भी थोड़ा ही द्रव्य प्राप्त करने के अधिकारी समझे जाते। व्यवहारिक रूप से जजमानी व्यवस्था में सेवा करने वाले निम्न जातियों की स्थिति इतनी निम्न रहती है कि इससे दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी हेडिंग है जातिगत हानियां। भारत में जजमानी व्यवस्था ने जाति प्रथा की असमानताकारी एवं शोषणकारी प्रवृत्ति को बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भी निम्न जातियों का शोषण निहित है। उच्च जातियों के जजमान अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निम्न जाति के कमीनों को सेवाओं से वंचित कर देते हैं, लेकिन निम्न जातियां व्यवहारिक रूप से जजमान को अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर पाते। तीसरी हेडिंग है सामाजिक हानियां। जजमानी व्यवस्था ने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया है जिसमें ग्रामीण वैमनस्य संघर्ष तथा शोषण को प्रोत्साहन मिला है। जब कोई जजमान अपने सामाजिक श्रेष्ठता अथवा आर्थिक शक्ति के कारण सेवा करने वाली जातियों का शोषण करता है और उन्हें निर्धारित पारितोषिक अथवा अधिकार से वंचित करता है, तो एक विशेष काम करने वाली जाति के सामने या तो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अथवा उसे गांव छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि जजमान काम करने वाली जात के किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से सेवा लेना आरंभ कर देता है, तो न केवल जजमान और कमीन की जातियों के बीच भी संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि स्वयं एक विशेष जात के सदस्यों के बीच भी संघर्ष होने लगता है। इस स्थिति में ग्रामीण जीवन के विघटन में वृद्धि की है। चौथी, राष्ट्रगत हानियां। जजमानी व्यवस्था के कारण गांव के लोग अपने ग्रामीण समुदाय को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सामाजिक इकाई के रूप में देखने लगते हैं, जिसके कारण केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के प्रभाव में ह्रास होने लगता है। सैंडरसन ने लिखा है, भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना का अत्यधिक अभाव है। ग्रामीणों की निष्ठा अपनी जाति और अपने गांव तक ही सीमित है। संभवतः यही कारण है कि भारत में विभिन्न सामाजिक विधान तथा राज्य की नीतियां यहां के ग्रामीण जीवन को अत्यधिक प्रभावित नहीं कर सकी। अगली हेडिंग है जजमानी व्यवस्था के विघटन के कारण। जजमानी व्यवस्था से संबंध उपयुक्त दोषों के कारण आज यह व्यवस्था तेजी से विघटित हो रही है। इसका कारण केवल गांवों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना में ही परिवर्तन होना नहीं है, बल्कि नियोजित कार्यक्रमों के फलस्वरूप भी गांवों की परंपरागत सामाजिक संस्थाओं में विघटन के तत्व स्पष्ट हो रहे हैं। वर्तमान युग में जजमानी व्यवस्था में उत्पन्न परिवर्तनों तथा विघटन के प्रति उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली हेडिंग है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि। गत वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन ग्रामों की कुल जनसंख्या पिछले 40 वर्षों में दुगुनी से भी अधिक हो गई है। गांव में कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण सीमित भूमि के द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ग्रामीणों के लिए कठिन प्रतीत होने लगा है। ऐसी स्थिति में जजमान काम करने वाली जातियों को पर्याप्त पारितोषिक अथवा जजमानी हक प्रदान नहीं कर पाते। इसके फलस्वरूप आज भी बहुत सी काम करने वाली जातियों ने परंपरागत सेवाओं के द्वारा आजीविका उपार्जित करना छोड़ दिया है। दूसरी हेडिंग है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। नगरीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव से अब गाँव की काम करने वाली निम्न जातियां समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का दावा करने लगी हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उन्हें नवीन व्यवसायों द्वारा आजीविका अर्जित करने के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। इससे निम्न जातियों में स्थानीय गतिशीलता की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। इसका स्वाभाविक परिणाम हमें जजमानी व्यवस्था के विघटन के रूप में देखने को मिलता है। तीसरी हेडिंग है द्रवीकरण का अभाव। विस्तृत जगत के द्वितीयक संबंधों ने अब गाँव में व्यक्तिवादिता तथा धन संचय को प्रोत्साहन दिया है। इसके प्रभाव से गांव में काम करने वाली अधिकांश जातियां अपनी सेवाओं के बदले में अपना नगद भुगतान प्राप्त करना चाहती हैं। यह स्थिति सेवाओं की अंतर संबद्धता को कम करके सेवा के विक्रय को अधिक प्रोत्साहन देने लगी हैं। इससे भी जजमानी व्यवस्था के संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चौथी हेडिंग है प्रौद्योगिक विकास। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आज दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंधित अनेक ऐसे नवीन उपकरणों का विकास हो गया है, जिनके फलस्वरूप काम करने वाले जातियों की सेवाओं का महत्व बहुत कम रह गया है। सेफ्टी रेजर, रुई धुनने की मशीनें, कपड़े धोने की मशीनें आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है कि नाई, धानुक, धोबी और इसी प्रकार के अन्य काम करने वाली जातियों का महत्व क्यों समाप्त हो रहा है। इन नई प्रविधियों के विकास के फलस्वरूप अधिकांश निम्न जातियों को अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पांचवी हेडिंग है शिक्षा का विस्तार। गांव में आधुनिक शिक्षा का प्रसार होने से भी जजमानी व्यवस्था से संबंध अनेक पैतृक व्यवसाय को करना अपमान की बात समझते हैं। जातीय नियमों का प्रभाव घटने तथा स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण किसी भी नगर में जाकर साधारण नौकरी करना इन जातियों के द्वारा अब अधिक सम्मानजनक समझा जाता है। छठवीं हेडिंग है निम्न जातियों की स्थिति में सुधार। जजमानी व्यवस्था के विघटन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण स्वयं निम्न जातियों के सामाजिक आर्थिक दशा में बहुत सुधार हो जाना है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं से निम्न जातियों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। जो जातियां एक बार अपनी स्थिति में सुधार कर लेती हैं, वे अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर ऊंची जातियों के समान अपने जीवन पद्धति को इस प्रकार बदलने लगती हैं जिससे संपूर्ण सामाजिक संरचना में उन्हें पहले से ऊंचा स्थान प्राप्त हो सके। सातवीं हेडिंग है परंपरागत मूल्यों के प्रति उदासीनता। वर्तमान युग में ग्रामीण समुदाय में भी लौकिकीकरण का प्रभाव तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप अब धार्मिक विश्वासों का रूप बदलने लगा है तथा जातिगत नियमों की व्याख्या समताकारी मूल्यों के आधार पर की जाने लगी है। स्वयं धर्म का प्रभाव कम हो जाने के कारण अब न तो जजमानी व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को आवश्यक समझा जाता है और न ही काम करने वाले विभिन्न जातियों के बीच कोई निश्चित संस्तरण बनाए रखना संभव रह गया है। दान, पुण्य, जजमानी हक, कर्म और भाग्य के अर्थ अब बदल रहे हैं। इसी स्थिति में जजमानी व्यवस्था के प्रभाव का बने रहना संभव नहीं रह गया है। आठवीं हेडिंग है समतावादी मूल्य। वर्तमान भारत एक धर्मनिरपेक्ष और समतावादी देश है, जिसमें धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी विभेद को बनाए रख सकना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में न तो जाति पंचायत किसी व्यक्ति को एक विशेष सेवा देने के लिए बाध्य कर सकती है और न ही जात के आधार पर किसी व्यक्ति से बेगार ली जा सकती है। काम करने वाली जातियां भी अब श्रम के आधार पर अधिक पारितोषिक की मांग करने लगी हैं। यदि जजमान द्वारा इन जातियों का शोषण किया जाता है तो वे अपने संघ बनाकर तथा राजनीतिक दबाव के द्वारा इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। यह स्थिति भी जजमानी व्यवस्था के परंपरागत स्वरूप को पूर्णतया प्रतिकूल है। जजमानी व्यवस्था के इस पूर्ण संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में यह संस्था एक लंबी अवधि तक प्रभावपूर्ण बनी रहने के पश्चात अब एक जीर्ण शीर्ण और विघटित संस्था के रूप में ही विद्यमान रह गई है। गांव में कुछ व्यक्ति आज भी इस व्यवस्था की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं और इसे अस्थायी बनाए रखने के पक्ष में हैं, लेकिन ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक संरचना में इतना परिवर्तन हो चुका है कि जजमानी व्यवस्था को इसके पूर्ण स्वरूप में संगठित कर सकना संभव प्रतीत नहीं होता। इस व्यवस्था का अस्तित्व प्राथमिक रूप से जाति व्यवस्था के एक निश्चित संस्करण तथा उसके प्रति ग्रामीणों के अटूट विश्वास से संबंध था। आज जैसे जैसे जाति व्यवस्था का संरचनात्मक स्वरूप समाप्त होता जा रहा है तथा विभिन्न जातियां राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में उभर रही हैं, जजमानी व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखना भी अब संभव नहीं रह गया है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।